लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम लोगों के मूल और स्मृति का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान युवाओं को भविष्य की ओर आशा और जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, सच्चाई सदैव कड़वी होती है और यही कारण है सच्चाई की बात कहने वाला बहुधा दूसरों की आंखों का किरकिरी बन जाता है। किसी के जीवन में हुई सच्ची बातों का उजागर इस तरह उस व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पर कई मर्तबा असहनीय हो जाती और इसका परिणाम यह होता है कि सच्चाई व्यक्त करने वाले इंसान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। सच्ची और मन के साफ ईमानदार व्यक्ति वर्तमान मानव समाज में दूसरों की बुराई के भुक्त भोगी होते हैं और उन्हें साधारणता किसी न किसी रूप में दबा दिया जाता है। श्रोताओ, सत्य बोलना और सत्य का सामना करना जिसके द्वारा मानव समाज की भलाई होती है आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यह असंभव तो नहीं लेकिन सहज भी नहीं है। सत्य हमारे जीवन में उस आग की भांति होती जिसे यदि विनम्रता और विनय में वहन किया जाए तो यह हमारे जीवन को परिशुद्ध करती जिसके फलस्वरूप हम अपने में अनमोल रत्न की भांति चमकने लगते हैं। वहीं यदि इसे दोष में लिया जाए तो यह आग प्रतिकार के रूप में व्यक्तियों को जलाकर भस्म करने में सदैव उतारू हो जाता है। श्रोताओ, 20वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए यीशु ख्रिस्त में दहकती एक आग की चर्चा करता है जिसे वे चाहते हैं कि वह दहक उठे। उनमें व्याप्त यह आग निश्चित रूप में उनके कार्यों और उनके शिक्षा में दहकती हुई यहूदी समाज को परिशुद्ध करती है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए सत्य रूपी आग के उसी लौ का निरीक्षण अपने जीवन में करें। क्या हम सत्य की आग को वहन करते हैं? क्या हम यीशु ख्रिस्त की सच्ची शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन का संचालन करते हैं जो सदैव हमारा शुद्धिकरण करती है? अपने स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण कहीं हम दूसरों के द्वारा जलाई गई सत्य की आग को बुझाने का प्रयास तो नहीं करते हैं?
ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी, 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध, सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध।
श्रोताओ, यीशु ख्रिस्त के अनमोल और शुद्धिकरण करने वाले जीवनदायी वचन रूपी आग हम में व्याप्त बुराइयों का विनाश करे जिससे हम उनके द्वारा बतलाए गए सत्य के मार्ग में अग्रसर हो सकें। जो हमें जीवन के सच्चे शांतिमय मार्ग में ले चलता है। श्रोताओ, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए नबी के विरुद्ध षड्यंत्र की चर्चा करता है, क्योंकि उन्होंने अपने नबुवत होने की जिम्मेदारी को वहन करते हुए इसराइली प्रजा को चुनौती प्रदान की। एक नबी का कार्य ईश्वर के दिव्य वचनों को घोषित करना, भविष्यवाणी करना और ईश प्रजा को उनके पापों की याद दिलाते हुए उन्हें सही मार्ग पर लाना है। अपने इन कार्यों के लिए नबी इसराइली नेताओं की आंखों का किरकिरी बन जाते और उन्हें अंधे कुएं में फेंक दिया जाता है, लेकिन ईश्वर अपने कार्य हेतु भेजे गए नबी की रक्षा करते और वह नेक व्यक्तियों द्वारा बचाया जाता है। श्रोताओ, यह हमें अपने जीवन देने वाले ईश्वर पर विश्वास करने और अपने विश्वास के कारण उन पर अडिग बने रहने का संदेश देता है। जीवनदाता ईश्वर ने हमें जीवन का वरदान देते हुए एक नबी की भांति इस धरती पर इसलिए भेजा है कि हम उनके कार्यों का निष्पादन कर सकें, और जब हम उनके कार्यों को सदैव अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी में करते हैं तो बेशक वे हमारी सुधि लेते और हमारी रक्षा करते हैं, और जब वे हमारी चिंता करते हुए हमारी देखभाल करते तो कौन हमारे विरुद्ध कार्य कर सकेगा। श्रोताओ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ इसी तथ्य को आगे ले चलते हुए हमें विश्वास में बने रहते हुए धैर्यपूर्ण जीवन जीने का आह्वान करता है। हमारे विश्वास के प्रवर्तक यीशु ख्रिस्त हैं, जिन पर हम अपनी निगाहें बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने हेतु बुलाए जाते हैं। वे हमें अपने विश्वास की पूर्णता तक ले चलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी खुशी हेतु असंख्य दुख सहते हुए अपने को क्रूस के काठ पर अर्पित कर दिया। यीशु ख्रिस्त ने अपने पिता पर विश्वास करते हुए सारी मानवता की खुशी के लिए अपने प्राणों का बलिदान अर्पित किया। उन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन की सारी दुख तकलीफों और कठिनाइयों में निरुत्साह हुए बिना धैर्य पूर्वक जीवन में आगे बढ़ना हमारी ओर से यीशु ख्रिस्त को चढ़ाए जाने वाला प्रेम का बलिदान होता है। श्रोताओ, सुसमाचार में हमने यीशु के हृदय में व्याप्त एक आग रूपी अभिलाषा की चर्चा सुनी, जिसे वह धधक उठने की बात कहते हैं। उनकी यह अभिलाषा क्रूस में अपने बपतिस्मा लेने के द्वारा पूरी हुई, जहां वे अपने संपूर्ण शरीर से लोहू बहाते हुए दुनिया के मानव जाति के सभी पाप और कलंक को धो डालते हैं। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त ने सत्य का साक्ष्य देते हुए एक नबी के रूप में अपने भेजे जाने अपने उत्तरदायित्वों को पूरा किया। वे दुनिया में इसलिए भेजे गए थे कि सत्य का साक्ष्य दें, और हमारे लिए सत्य यही है कि हम सभी ईश्वर के प्रिय संतान हैं, जिन्हें वे अतुल्य प्रेम करते हैं। ईश्वर की निगाहों में हम सभी, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वेशभूषा और रंग रूप के क्यों ना हों, वे हमें एक समान प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया है। हमारे लिए सत्य यही है कि ईश्वर बिना भेदभाव किए हमारे संग अपना जीवन साझा करते और हमारी भलाई तथा खुशी की कामना करते हैं। श्रोताओ, ईश्वर की यह अभिलाषा आग का वह रूप है, जहां वे हमारे बीच से सारी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने इसी कार्य को निष्ठापूर्ण ढंग से हमारे लिए पूरा किया, और स्वयं उन्हें बुराई की आग, मृत्यु का शिकार होना पड़ा। आज हमारे बीच फूट और अशांति है, क्योंकि हमने ईश्वरीय सत्य को स्वीकार नहीं किया है। आज हमारे परिवारों में फूट है, क्योंकि हम ईश्वरीय प्रेम का आलिंगन करने के बदले स्वार्थ और व्यक्तिगत अहम से ग्रसित हैं। आज समाज में युद्ध और तकरार की स्थिति बनी है, क्योंकि हम नम्रता में झुकने के बदले दूसरों को नीचा दिखलाने और उन्हें झुकाने की कोशिश करते हैं। यीशु प्रेम की आग लेकर आए। उस प्रेम से उनका दिल सदैव दहकता रहता है, जैसे कि हम पवित्र हृदय की प्रतिमा में उन्हें पाते हैं। आज मानव ने स्वार्थ में उस प्रेम को अशांति में बदल दिया है, जिसके भागीदार हम सभी हैं। आइए हम ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमारे हृदयों में संग्रहित पाप, दोष और सभी बुराइयों को अपने प्रेम की अग्नि से जलाकर भस्म करें, जिससे हम उनमें एक नया प्राणी बनते हुए उनके प्रेम को दुनिया में प्रसारित कर सकें।
स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया राजा होकर प्रजा बना, स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया राजा होकर प्रजा बना, मेरे गुनाहों की माफी देने, मेरे गुनाहों की माफी देने आया तू, आया तू आया, पर मैंने ना तुझको पहचाना, पर मैंने ना तुझको पहचाना, क्षमा करो करो
क्षमा करो। आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विश्व में कई समस्याओं के बीच संत पापा फ्रांसिस ने अनवरत प्रार्थना करते रहने का प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब लाती और उनसे जोड़े रखती है। उन्होंने 13 अगस्त के ट्वीट संदेश में लिखा, हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, उस समय भी जब सब कुछ व्यर्थ लगे, जब ईश्वर बहरे और गूंगे लगे और यह मेरे लिए समय की बर्बादी के समान महसूस हो, भले ही स्वर्ग धूमिल लगे, ख्रिस्त विश्वासी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। घरेलू न्याय एवं मानव विकास पर अमेरिकी धर्मदर्श समिति के अध्यक्ष महाधर्मदर्श पॉल एस कोकले का कहना है कि मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम में निहित जलवायु प्रावधान हमारे आम घर की देखभाल के लिए संत पापा फ्रांसिस के आह्वान का प्रत्युत्तर देते हैं। अमेरिकी धर्मदर्शों ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने, दवाओं की लागत को कम करने और बड़े निगमों पर एक न्यूनतम कर स्थापित करने के लिए $430 बिलियन के एक ऐतिहासिक बिल का स्वागत किया है, जो अगर अधिनियमित होता है तो अमेरिकी इतिहास में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़े निवेश का प्रतिनिधित्व करेगा। मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम रविवार को पारित हुआ और शुक्रवार को डेमोक्रेट कंट्रोल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा अनुमोदित होने की उम्मीद है। बिल को बनाने में 18 महीने से अधिक समय हो गया है और बिल्ड बैक बेटर एक्ट राष्ट्रपति जो बाइडेन के रिकवरी पैकेज के नवीनतम संस्करण को प्रस्तुत करता है। इसमें स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी और सौर पैनलों के घरेलू निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक वाहक टैक्स ब्रेक और ग्रीन हाउस गैस कटौती के प्रयासों में निवेश के लिए $369 बिलियन की रिकॉर्ड राशि शामिल है। हालांकि यह बिल काफी हद तक पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है, लेकिन ऐसे कई प्रावधान भी हैं जो स्वास्थ्य देखभाल सहित पूरी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देती है। घरेलू न्याय एवं मानव विकास पर कैथोलिक धर्मदर्श समिति के अमेरिकी सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्मदर्श पॉल एस कोकले ने एक बयान में सीनेट में विधेयक के पारित होने की सराहना की है। उन्होंने कहा है, मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम के माध्यम से पर्यावरण और दवाओं की कम लागत का समर्थन करने के उनके प्रयासों के लिए मैं सीनेट का आभारी हूं। यह भी विवेकपूर्ण है कि मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था के बारे में चिंताएं अधिक होने पर इस कानून में निवेश को बदलने हेतु राजस्व प्रावधान शामिल हैं। ओक्लाहोमा शहर के महाथमा दस ने कहा, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक परिवर्तन है जो कांग्रेस से दीर्घकालीन साहस की मांग करता है। यह देखते हुए कि बिल में निहित कई महत्वपूर्ण जलवायु प्रावधान पेरिस समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों का सम्मान करने के करीब लाते हैं, जिसे पोप फ्रांसिस ने हमें पूरा करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा, यह हमारे आम घर की देखभाल करने के लिए एक सार्थक प्रयास है जब हम अर्थव्यवस्था की रक्षा करने और गरीबों को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में मोगादिशु के प्रेरितिक प्रशासक धर्मदर्श जॉर्ज बेतिन ने सोमालिया में 40 वर्षों में सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहे मानवीय आपातकाल के बारे बातें की हैं, जब कलीसिया इससे प्रभावित लाखों लोगों के लिए मानवीय राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जलवायु संबंधी संकट यूक्रेन में युद्ध के कारण खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमत से बदतर हो गई है।
शुक्रवार 12 अगस्त को संत पापा फ्रांसिस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच टेलीफोन में बातचीत हुई। उनकी बातचीत सभी यूक्रेनी लोगों के साथ संत पापा की अक्सर व्यक्त एकजुटता के हिस्से के रूप में हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद एक ट्वीट में इस खबर की जानकारी दी। दोनों ने 24 फरवरी को रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेनी लोगों द्वारा झेली जा रही भयावहता के बारे में बातें की और राष्ट्रपति ने संत पापा को उनकी प्रार्थनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट में लिखा, हमारे लोगों को विश्व के आध्यात्मिक नेताओं के समर्थन की आवश्यकता है जो यूक्रेन में हमलावर द्वारा किए गए भयानक कृत्यों की सच्चाई के बारे में दुनिया को अवगत कराएं। इसके तुरंत बाद एक अलग ट्वीट में वाटिकन में यूक्रेन के राजदूत श्री आड्री यूराश ने टेलीफोन पर बातचीत की खबर को दोहराया और कहा कि यूक्रेनी राज्य और समाज संत पापा का अभिवादन करने में प्रसन्न होंगे। उन्होंने संत पापा फ्रांसिस की कीव यात्रा की उम्मीद को व्यक्त किया। संत पापा फ्रांसिस और राष्ट्रपति जेलेंस्की इससे पहले दो बार फोन और वीडियो कॉल में बात कर चुके हैं। संघर्ष की शुरुआत के बाद से कई मौकों पर संत पापा फ्रांसिस ने यूक्रेन वासियों को याद किया। 10 अगस्त को आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने यूक्रेनी लोगों की चल रही पीड़ा पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, वे अभी भी इस क्रूर युद्ध से पीड़ित हैं। इन महीनों के दौरान संत पापा ने दुनिया भर से लगातार अपील की है कि वे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को न भूलें और न ही उन लोगों का स्वागत करते हुए थकें जो शांति की तलाश में अपने घरों से भागने को मजबूर हुए हैं। उधर लंदन स्थित यूक्रेनियन वेलकम सेंटर उन हजारों यूक्रेनियों की सहायता और आशा प्रदान कर रहा है जो अपने देश में रक्तपात से बचने के लिए ब्रिटेन पहुंचे हैं। कई लोगों ने अपने घरों को नष्ट होते देखा और जो कुछ वे ले जाने में सक्षम थे उसे लेकर सुरक्षा की तलाश में निकल पड़े। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के अनुसार संघर्ष से बचने के लिए 1,10,000 से अधिक यूक्रेनी ब्रिटेन पहुंचे हैं। जो लोग दूसरे देश में जाते हैं उन्हें आवास और पहुंच सेवाओं को खोजने में सक्षम होने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रेट ब्रिटेन में यूक्रेनियन संघ के साथ साझेदारी में यूक्रेनी कैथोलिक धर्मप्रांत पवित्र परिवार द्वारा लंदन में यूक्रेनियों की सहायता के लिए एक स्वागत केंद्र स्थापित किया गया है। यूक्रेनियन स्वागत केंद्र में एक वेबसाइट भी है जहां लोग स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, रोजगार, भाषा समर्थन और शिक्षा के साथ साथ दीर्घकालिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धर्मप्रांत के महागिरजाघर के परिसर पर स्थित यूक्रेनियन स्वागत केंद्र के निर्देशक आंद्रे मार्केज हैं। उन्होंने वाटिकन न्यूज को बताया, हमें इन लोगों को रहने की जगह के साथ साथ सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की जरूरत है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगी। नमस्कार।